रॉन और जीनी ने वहां जाकर हॉल को देखा। उस हॉल को चर्च का सेटअप दिया हुआ था और पूरे हॉल को शादी के हॉल की तरह सजाया गया था। सामने ब्राइड और ग्रूम की डमी थी जो क्रिश्चियन वेडिंग ड्रेस में थी। वहीं पास में एक टेबल पर दो अंगूठियां रखी थीं। उसे देखकर रॉन ने हंसते हुए कहा, आह प्रियल, फीलिंग बैड फॉर यू। इसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे तुमने सब कुछ मिस कर दिया हो। तुम उसे शादी के लिए भी प्रपोज करने वाले थे ना? निक ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, लेकिन अब पता नहीं कब मौका मिलेगा। वहीं उसे देखकर जीनी ने रॉन को धीरे से मारते हुए कहा, डेम, प्यार से, रॉन, तुमने मुझे ऐसे प्रपोज क्यों नहीं किया? क्योंकि उस वक्त मैं सिर्फ 17 साल का था, रॉन ने जवाब दिया। अच्छा, जब तुम लोग शादी अटेंड करने जाओ तो प्रियल को बता देना मैं ठीक हूँ। और डोंट वरी, मैं उसका एडमिशन वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दूंगा। फिलहाल के लिए मुझे थोड़ी स्टडी करनी होगी क्योंकि मेरा कल मेडिकल का एग्ज़ाम है, निक ने कहा। मैं तो इस बारे में भूल ही गया था। अच्छा, तुम बाकी की ट्यूशन छोड़ो और अपनी प्रेपरेशन करो, जीनी ने कहा। निक ने हंसते हुए जवाब दिया, करनी ही पड़ेगी, मुझे मिस शर्मा जैसा परफॉर्म तो थोड़ी ना देना है। वहां से रॉन और जीनी अपने घर चले गए। निक थोड़ी देर तक वहीं पर खड़ा रहकर उस जगह को देख रहा था। अचानक उसे अपनी स्टडी की याद आई तो वो भी वहां से चला गया। प्रियल सुबह उठी तो उसने जीनी का मैसेज देखा और कहा, थैंक गॉड कि वो ठीक है, वरना मैं तो रात को घबरा ही गई थी। अब जब वो शादी अटेंड करने आएंगे तब उनसे बात कर लूंगी। प्रियल उठी और तैयार होने चली गई। शाम को मिस्टर दत्ता के घर पर रोहन और शालू की शादी की रस्म चल रही थी। प्रियल वहां मौजूद थी। उसे बस निक की फिक्र सता रही थी। हालांकि जीनी ने मैसेज करके उसे निक के ठीक होने की बात बता दी थी, उसके बावजूद निक को वहां ना देखकर प्रियल को उसकी फिक्र हो रही थी। मौका देखकर प्रियल जीनी के पास जाकर बोली, जीनी, निक ठीक तो है ना? वो यहां क्यों नहीं आए? क्या वो मुझसे गुस्सा है? जीनी ने जवाब दिया, हाँ वो ठीक है, तुम फिक्र मत करो। प्रियल ने उदास होकर कहा, इंस्टीट्यूट का नेक्स्ट सेशन 10 दिन बाद शुरू होगा ना? आज वो यहाँ आते तो मैं उनसे मिल पाती, लेकिन अब तो पता नहीं कब मिलना होगा। क्या मैं उन्हें कॉल कर सकती हूँ? जीनी ने जवाब दिया, अभी तो कॉल मत करना, कल से उसके मेडिकल के एग्जाम है, बस इसी वजह से यहाँ नहीं आ पाया। अपना मूड ऑफ मत करो, मैं तुम्हें उसके बारे में पल पल की अपडेट देती रहूंगी। प्रियल बोली, वो पढ़ते भी हैं क्या? मुझे लगा उन्हें टाइम ही नहीं मिलता होगा। जीनी ने कहा, हाँ बड़े अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा है, तुमसे बेटर जो परफॉर्म करना है। प्रियल बोली, पता नहीं क्यों मेरे मार्क्स के पीछे पड़े रहते हैं, अब उनका रिपोर्ट कार्ड जब मेरे सामने आएगा ना तब देखना मैं उनकी क्लास लूंगी। जीनी ने हंसते हुए कहा, हाउ स्वीट, वो तुम्हारी क्लास लेने की सोच रहा है और तुम उसकी, ये सब तो लगा ही रहेगा, तुम अपना ध्यान रखना, निक ने कहा है कि वो सब संभाल लेगा। हाँ, उनके रहते मुझे ट्यूशन लेने की क्या जरूरत है, वो है ना मेरे साथ और हमेशा रहेगा, जीनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। शादी के सारे फंक्शन खत्म हो जाने के बाद प्रांजल, प्रियल और अंजुमन कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। दीदी, निक शादी में क्यों नहीं आए? प्रांजल ने पूछा। प्रियल ने जवाब दिया, उनके मेडिकल के एग्जाम है, अब पता नहीं बात कब होगी। ओ, तो तभी तो मूड खराब करके बैठी हो, अंजुमन ने प्रियल के उदास चेहरे को देखकर कहा। प्रांजल ने प्रियल का मूड ठीक करने के लिए कहा, अच्छा दीदी, शादी तो खत्म हो गई, याद है एक बार मम्मा ने हमें नानी से मिलने के लिए अमृतसर जाने के लिए कहा था? हाँ प्रियल, नानी भी कब से तेरा वेट कर रही है, वो कहती नहीं लेकिन उन्हें तुम्हारे साथ वक्त बिताना होता है, अंजुमन ने प्रांजल की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। प्रियल बोली, ठीक है, कल परसों तक चल लेंगे, लेकिन उससे पहले मम्मा की भी तो परमिशन लेनी है, उनके हाँ बोलने के बाद मुझे टिकट बुक करने का झंझट, फिर इतनी सारी पैकिंग करनी है, तब कोई जा आएगा। प्रांजल ने कहा, हमें पता था आप नानी से मिलने के लिए कभी मना कर ही नहीं सकती, इसलिए हमने पहले से ही सारी तैयारियां कर रखी थी। दीदी, आपको पता है हमने ये प्लान पहले से ही बना रखा था और मम्मा ने तो कब की परमिशन दे दी थी। प्रियल ने मुंह बनाकर कहा, कैसे हो तुम दोनों, मुझे मेरे निक से दूर करने पर तुले हो, काफिर के दुश्मन कहीं के। प्रांजल ने जवाब दिया, बस 1 वीक की तो बात है, फिर रहना अपने निक के पास, एक नंबर का सड़ू है वो, जब देखो दूसरों को धमकाते रहता है। चलो, अच्छा हुआ तुम लोगों ने ये सब पहले से ही तैयारियां करके रखी थी, वरना एक हफ्ता तुम्हारे रिश्तेदारों के साथ रहना किसी नर्क से कम नहीं था। अच्छा, फ्लाइट कब है? अभी 2 घंटे बाद की, अंजुमन के कहते ही प्रियल उसे तिक्के से मारते हुए बोली, और ये बात तुम दोनों मुझे अब बता रहे हो? वैसे तो हमने सब तैयारियां कर रखी हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ स्पेशल चाहिए तो तुम्हारे पास 1 घंटा है, अब जल्दी से रेडी हो जाओ, अंजुमन के कहते ही प्रियल बाथरूम की तरफ भागी। थोड़ी देर बाद तीनों तैयार होकर एयरपोर्ट के लिए निकल गए।
मिस्टर दत्ता के रिश्तेदार कुछ दिन के लिए वहीं उनके घर रहने वाले थे, इसीलिए उनके जाने से प्रियंका जी भी खुश थीं। दूसरी तरफ निक अपने एग्जाम खत्म करके वहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर दीक्षित से मिलने उनके केबिन में गया। हेलो डॉक्टर दीक्षित, होप आई डोंट डिस्टर्ब यू, निक ने अंदर आते हुए कहा। डॉक्टर दीक्षित ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ओ कम ऑन निक, डोंट बी फॉर्मल, मुझे खुशी हो रही है तुम मेडिकल एग्जाम दे रहे हो। वैसे कैसा गया आज का पेपर? डिग्री मिलने के बाद तुम भी अपनी मॉम की तरह डॉक्टर बन जाओगे? निक ने कहा, पता नहीं, मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिला प्रेपरेशन का। वो लोग बात कर रहे थे तभी डॉक्टर दीक्षित का बेटा बिहान वहां पर आया। निक उसकी तरफ हैरानी से देख रहा था, वो किसी काम से वहां आया था और जल्दी ही वहां से चला गया। उसके जाते ही निक ने पूछा, बिहान को क्या हुआ अंकल? जो लड़का इतना शर्मीला था कि रूम से बाहर भी नहीं निकलता था, वो अब रॉकस्टार बन के घूम रहा है। ही हैज कम्प्लीटली चेंज्ड। निक की बात सुनकर डॉक्टर दीक्षित मुस्कुराने लगे। निक ने कहा, और अब इसकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक लग रही है, आई थिंक इसकी सर्जरी हो गई होगी ना? हाँ, अब ये बिल्कुल ठीक है और इसमें ये बदलाव सर्जरी की वजह से ही आया है। तुम इससे मिले हुए काफी वक्त हो गया, इसीलिए तुम्हें हैरानी हो रही है। निक ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं अंकल, सर्जरी के बाद में इतना चेंज कैसे हो सकता है कोई? डॉक्टर दीक्षित ने जवाब दिया, बिहान की हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई थी। निक ने कहा, हाँ अंकल, मैं जानता हूँ कि इसके हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, पर एक हार्ट ट्रांसप्लांट होने से इतना चेंज? डॉक्टर दीक्षित बोले, तुम्हारी मेडिकल की स्टडी अभी स्टार्ट ही हुई है इसीलिए तुम नहीं जानते, लेकिन एक हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद इसमें ये सब चेंज आना कॉमन है। जिस व्यक्ति का हार्ट दूसरे व्यक्ति में ट्रांसप्लांट किया गया है उसकी ऑलमोस्ट सभी आदतें इसमें आ चुकी हैं। ऐसा बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि अगर एक व्यक्ति का हार्ट दूसरे व्यक्ति में ट्रांसप्लांट किया जाए तो उसकी आदतें, उसकी पसंद नापसंद, यहाँ तक कि व्यक्ति कई बार तो खुद पूरा का पूरा ही बदल जाता है। कहते हैं ना, को दिल ही हमारा आईना होता है, बस जिसका दिल उसके पास आया है अब वो उसके जैसे ही बन गया है। लगभग 60-70% केसेस में ये सब चेंजेस कॉमन है। फिर तो अच्छा हुआ ना बिहान में इतना चेंज आ गया, और वो इंसान जो आज इस दुनिया में नहीं है उसका दिल अभी भी धड़क रहा है, वो इस दुनिया में ना होते हुए भी आज भी जिंदा है। मेडिकल साइंस ने भी कितनी तरक्की कर ली है ना, जो एक इंसान मरने के बाद भी जिंदा है, डॉक्टर दीक्षित ने कहा। हाँ ये तो है, वैसे सच कहूँ तो एमा ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया था एली का हार्ट डोनेट करने का।
डॉक्टर दीक्षित की बात सुनकर निक चौंक गया क्योंकि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। एली के जाने के बाद से वो लोग निक के सामने उसकी बात नहीं करते थे। एली का हार्ट डोनेट किया गया था, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है अंकल। मुझे नहीं पता था एमा ने तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया। वैसे देखा जाए तो तुम्हारी एली आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है और उसका दिल आज भी धड़कता है, भले ही किसी और के सीने में हो, मगर वो है जरूर। तो क्या मैं पता लगा सकता हूँ कि एली का दिल किसके पास है अंकल? निक ने पूछा। ये तो तुम्हें एमा से ही पूछना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। निक ने डॉक्टर दीक्षित के सामने अपना बिहेवियर बहुत सामान्य रखा, लेकिन अंदर ही अंदर एली के हार्ट डोनेट करने की बात सुनकर वो बहुत बेचैन हो गया था। एमा ने मुझे इस बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? जैसा कि डॉक्टर दीक्षित ने कहा, हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद एक इंसान काफ़ी हद तक बदल जाता है, तो क्या वो इंसान भी बिल्कुल मेरी एली की तरह हो गया होगा? मुझे एमा से मिलकर इस बारे में सब कुछ जानना होगा। सोचते हुए निक अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा और अपनी गाड़ी एमा के घर की तरफ ली।